एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195729572।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
मुकदमा हो करे कर लो एक वकील, मुकदमा हो करे कर लो एक वकील, मुकदमा हो करे कर लो एक वकील। कर लो एक वकील मुकदमा हो गरे, कर लो एक
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों और हृदयों को खोल दे और तेरा वचन को समझने के लिए मदद कर। मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तू अपने वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और मेरे संग हो पिता तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा तेरे वचनों को बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्रिय श्रोताओं, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है कलीसिया का संगठन। दृश्यमान और अदृश्य शब्दों का प्रयोग पृथ्वी पर कलीसिया के दो पहलुओं में अंतर करने के लिए किया गया है। दृश्यमान कलीसिया सेवा के लिए आयोजित परमेश्वर की कलीसिया है। यह दुनिया में सुसमाचार को ले जाने के लिए मसीह के महान आदेश को पूरा करती है, मत्ती 28:18-20, और लोगों को उसकी तेजस्वी वापसी के लिए तैयार करती है, 1 थिस्सलुनीकियों 5:23, इफिसियों 5:27। मसीह की विशेष रूप से चुनी हुई गवाह यह दुनिया को रोशन करती है और सेवा करती है, जैसे कि उसने की कंगालों को सुसमाचार सुनाया, बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार किया और कुचले हुओं को छुड़ाने का और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार किया, लूका 4:18-19। अदृश्य कलीसिया, जिसे सार्वभौमिक कलीसिया भी कहा जाता है, दुनिया भर में परमेश्वर के सभी लोगों से बनी है। इसमें दृश्य कलीसिया के विश्वासी शामिल हैं और बहुत से लोग, हालांकि वे एक कलीसिया संगठन से संबंधित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने उस सब ज्योति का अनुसरण किया है जो मसीह ने उन्हें दी है, यूहन्ना 1:9। इस बाद के समूह में वे लोग शामिल हैं जिन्हें कभी भी यीशु मसीह के बारे में सच्चाई सीखने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन जिन्होंने पवित्र आत्मा के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की है और स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, रोमियों 2:14। अदृश्य कलीसिया के अस्तित्व से पता चलता है कि परमेश्वर की आराधना उच्चतम अर्थों में आध्यात्मिक है। सच्चे भक्त, यीशु ने कहा, पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है, यूहन्ना 4:23। सच्ची आराधना की आध्यात्मिक स्वरूप के कारण मनुष्य ठीक ठीक गणना नहीं कर सकता कि कौन परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा है और कौन नहीं। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को अदृश्य कलीसिया से अपनी दृश्यमान कलीसिया के साथ एकता में ले जाता है। मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा, यीशु मसीह ने यह कहा, यूहन्ना 10:16 में हम पाते हैं। केवल दृश्यमान कलीसिया में ही वे परमेश्वर की सच्चाई, प्रेम और संगति का पूर्ण अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उसने दृश्यमान कलीसिया को ऐसे आत्मिक वरदान दिए हैं जो उसके सदस्यों को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उन्नत करते हैं, इफिसियों 4:4-16। जब पौलुस परिवर्तित हुआ तो परमेश्वर ने उसे अपनी दृश्यमान कलीसिया के संपर्क में लाया और फिर उसे अपनी कलीसिया के विशेष कार्य में अगुवाई करने के लिए नियुक्त किया, प्रेरितों के काम 9:10-22। ठीक वैसे ही आज वह अपने लोगों को अपनी दृश्यमान कलीसिया में ले जाने का इरादा रखता है, जिसमें परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादारी और यीशु के विश्वास को रखने की विशेषता है, ताकि वे पृथ्वी पर उसके विशेष कार्य को पूरा करने में भाग ले सके, प्रकाशित वाक्य 14:12-18:4, मत्ती 24:14। अदृश्य कलीसिया की अवधारणा को स्वर्ग और पृथ्वी पर संयुक्त कलीसिया, इफिसियों 1:22-23, और सताव के समय में छिपी हुई कलीसिया को शामिल करने के लिए भी माना गया है, प्रकाशित वाक्य 12:6-14। कलीसिया का संगठन पूरी दुनिया में सुसमाचार को ले जाने के मसीह के आदेश में उन लोगों का पोषण भी शामिल है जिन्होंने पहले ही सुसमाचार को स्वीकार कर लिया है। नए सदस्यों को विश्वास में स्थापित किया जाना है और विशेष कार्य में उनकी परमेश्वर प्रदत्त प्रतिभा और उपहारों का उपयोग करना सिखाया जाता है। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का कर्ता नहीं है, लेकिन चाहता है कि सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं, 1 कुरिन्थियों 14:33-40। कलीसिया का एक सरल लेकिन प्रभावी संगठन होना चाहिए। संगठन का स्वरूप, आइए हम कलीसिया की सदस्यता और संगठन पर विचार करें। पहला, कलीसिया की सदस्यता। जब वे कुछ योग्यताओं को पूरा कर लेते हैं तो परिवर्तित विश्वास के नई वाचा समुदाय के सदस्य बन जाते हैं। सदस्यता में अन्य लोगों, राष्ट्र और परमेश्वर के प्रति नए संबंधों की स्वीकृति शामिल है। क, सदस्यता योग्यताएं। जो लोग उसकी कलीसिया के सदस्य बनना चाहते हैं उन्हें यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए और बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रेरितों के काम 2:36-41 और प्रेरित क्रिया 4:10-12। उन्हें नए जन्म का अनुभव करना चाहिए और मसीह की आज्ञा को स्वीकार करना चाहिए कि वे दूसरों को उन सभी बातों का पालन करना सिखाएं जिनकी उसने उन्हें आज्ञा दी है। ख, समानता और सेवा। मसीह की इस घोषणा के सामंजस्य में कि तुम सब भाई हो और जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने, मत्ती 23:8-11, सदस्य समानता के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिर उन्हें यह भी महसूस करना चाहिए कि मसीह के उदाहरण का अनुसरण करने का अर्थ है कि उन्हें दूसरों की जरूरतों के लिए सेवा करनी है, उन्हें स्वामी के पास ले जाना है। ग, सभी विश्वासियों की याजकता। स्वर्गीय पवित्र स्थान में मसीह की सेवकाई के साथ लेवीय याजकता की प्रभावशालीता समाप्त हो गई। अब कलीसिया याजकों का पवित्र समाज बन गई है। 1 पत्रस 2:5। तुम, पत्रस ने कहा, एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। 1 पत्रस 2:9। यह नई व्यवस्था सभी विश्वासियों की याजकता, प्रत्येक व्यक्ति को कलीसिया समुदाय के प्रति जवाबदेही के बिना सोचने, विश्वास करने और सिखाने के लिए अधिकृत नहीं करती है। इसका अर्थ है कि कलीसिया के प्रत्येक सदस्य पर परमेश्वर के नाम से दूसरों की सेवा करने की जिम्मेदारी है और वह बिना किसी मानवीय मध्यस्थ के सीधे उसके साथ संवाद कर सकता है। यह कलीसिया के सदस्यों की परस्पर निर्भरता के साथ साथ उनकी स्वतंत्रता पर जोर देती है। यह याजकता पादरियों और सामान्य जन के बीच कोई गुणात्मक भेद नहीं करती है, हालांकि यह इन भूमिकाओं के बीच कार्य में अंतर के लिए गुंजाइश छोड़ती है। घ, परमेश्वर और राष्ट्र के प्रति निष्ठा। बाइबल सरकार की स्थापना में परमेश्वर के हाथ को पहचानती है और विश्वासियों को नागरिक अधिकारियों का सम्मान करने और उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। जो नागरिक अधिकार रखता है वह परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड देता है। कलीसिया के सदस्य, इसलिए जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। रोमियो 13:4-7 कहता है। राष्ट्र के प्रति उनके दृष्टिकोण में सदस्य मसीह के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होते हैं। जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो, मत्ती 22:21। लेकिन अगर राष्ट्र किसी दिव्य आदेश में हस्तक्षेप करता है तो उनकी सर्वोच्च निष्ठा परमेश्वर के प्रति है। प्रेरितों ने कहा, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य धर्म है। प्रेरितों के काम 5:29। दूसरा, कलीसिया संगठन का प्रमुख कार्य। इस ग्रह को परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भरने की परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए कलीसिया का आयोजन किया गया था। केवल दृश्यमान कलीसिया ही इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य प्रदान कर सकती है। पहला, आराधना और प्रोत्साहन। पूरे इतिहास में कलीसिया सब्बत के दिन सृष्टिकर्ता की आराधना करने के लिए विश्वासियों को इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर का माध्यम रही है। मसीह और उसके प्रेरितों ने इस आराधना प्रथा का पालन किया और पवित्र शास्त्र आज विश्वासियों को सलाह देता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। इब्रानियों 10:25 और 3:13 भी कहता है, सामूहिक उपासना से उपासक को ताजगी, प्रोत्साहन और आनंद मिलता है। दूसरा, मसीही सहभागिता। कलीसिया के माध्यम से सदस्यों की सहभागिता के लिए गहनतम आवश्यकताएं पूरी तरह से संतुष्ट होती हैं। सुसमाचार में सहभागिता फिलिपियों 1:5 अन्य सभी संबंधों से बढ़कर है, क्योंकि यह परमेश्वर के साथ साथ समान विश्वास वाले अन्य लोगों के साथ एक घनिष्ठ संबंध प्रदान करती है। पहला यौना 1:3-7। तीसरा, शास्त्र की शिक्षा। मसीह ने कलीसिया को स्वर्ग के राज की कुंजियां दी, मत्ती 16:19। ये कुंजियां मसीह के वचन हैं। बाइबल के सभी वचन, अधिक विशेष रूप से वे राज्य में प्रवेश करने के तरीके के संबंध में ज्ञान की कुंजी को सम्मिलित करते हैं। लूका 11:52। यीशु के वचन उन सभी के लिए आत्मा और जीवन है जो उन्हें ग्रहण करते हैं। यूहन्ना 6:66। वे अनंत जीवन लाते हैं। यूहन्ना 6:68। जब कलीसिया बाइबल की सच्चाइयों की घोषणा करती है तो उद्धार की इन चाबियों में बांधने और खोलने, स्वर्ग को खोलने और बंद करने की शक्ति होती है, क्योंकि वे उन मानदंडों की घोषणा करते हैं जिनके द्वारा लोगों को प्राप्त किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है, बचाया जाता है या खो दिया जाता है। इस प्रकार कलीसिया की सुसमाचार घोषणा जीवन की सुगंध या मृत्यु की गंध 2 कुरिन्थियों 2:16 को उजागर करती है। यीशु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीने के महत्व को जानता था, मत्ती 4:4। केवल ऐसा करने से ही कलीसिया सभी राष्ट्रों को सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाने के यीशु के आदेश को पूरा कर सकती है, मत्ती 28:20। चौथा, दिव्य अध्यादेशों को लागू करना। कलीसिया बपतिस्मा की आज्ञा, कलीसिया में प्रवेश का संस्कार और पैर धोने की विधियां और प्रभुभोज को लागू करने के लिए परमेश्वर का साधन है। पांचवा, दुनिया भर में सुसमाचार की घोषणा। कलीसिया को संगठित उस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है जिसे इज़राइल करने में विफल रहा, जैसा कि प्रभु के जीवन में देखा गया है। कलीसिया द्वारा दुनिया को प्रदान की जाने वाली सबसे बड़ी सेवा सुसमाचार सब जातियों पर गवाही, मत्ती 24:14, जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा द्वारा सशक्त है, को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना है। इस विशेष कार्य में मसीह की वापसी के लिए तैयारी के संदेश की घोषणा करना शामिल है, जो दोनों स्वयं कलीसिया 1 कुरिन्थियों 1:7-8 तथा दूसरा पत्रस 3:14 और प्रकाशित वाक्य 3:14-22 और 14:5 और शेष मानव जाति के लिए की जानी है। प्रकाशित वाक्य 14:6-12 में हम यह पढ़ते हैं, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगी। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और प्रकाशित वाक्य 18:4 कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। इसलिए आइए हम परमेश्वर के सच्चे कलीसिया में आएं और सुरक्षित रहें जिसमें वह हमें बुला रहा है, और हम अपने आप को और दूसरों को भी उसके आने के दिन के लिए तैयार करें कि हम उसके राज्य में सदा सर्वदा रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता हमें तेरे कलीसिया में बुला, हमें तेरे सच्चे राह में चला और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद दे पिता, और हमें स्वर्गीय राज्य में बचा ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान।
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।